मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के 24 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने महाविविधता राष्ट्र मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज के बारे में आपसे कुछ बातें की थी। उसमें एक दो बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि उससे इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपको थोड़ी और ज्यादा मालूम हो सकेगी। पहला तो ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है और सच पूछे तो समझ भी लिया है कि ये जो जितने हमारे महाविविधता राष्ट्र हैं, आप देखिए मैप में जाकर के देखिए तो अधिकांश राष्ट्र जो हैं उष्णकटिबंध में स्थित हैं। मैं अधिकांश शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए जो अमेरिका है वो उष्णकटिबंध में नहीं है, है ना, तो अधिकांश राष्ट्र शब्द का यहां अधिक प्रयोग किया गया है। और ये क्यों यहां है, मतलब उष्णकटिबंध में क्यों है, इसके जो सबसे चार मुख्य कारण माने जाते हैं वे हैं ताप, ताप के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। दूसरा है वर्षा, वर्षा भी कहीं ना कहीं ताप से जुड़ा हुआ है। तीसरी है मृदा यानी कि वहां की जो मिट्टी है सॉइल है वो, और चौथा है समुद्र तल से ऊंचाई जिसे हम पर्वत भी एक प्रकार से कह सकते हैं, पर्वत से इसे जोड़कर देख सकते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और मुझे लगता है कि ये मेंस के आंसर लिखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, वह है कि देखिए पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज हैं, 200 देश, और उन 200 देशों में जो महाजैव विविधता कह लीजिए वो कितने देशों में, 17 देशों में है जिन्हें घोषित किया गया है ना महाविविधता राष्ट्र, 17 देशों। और इन 17 देशों के पास ही, केवल 17 देशों के पास ही जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका 70% है, 70% केवल 17 देशों के पास 200 में से। चलिए आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ देश तो ज्योग्राफिकली बहुत बड़े हैं, जैसे चीन देखिए बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है, अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा है, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा दूसरे डेटा के आधार पर देखते हैं। जैसे जो पूरा जो लैंड एरिया है आप देखिए, उस पूरे लैंड एरिया का ये जो महाविविधता वाले राष्ट्र हैं उसका केवल लगभग 10% ही है, यानी कि लैंड एरिया 10% है और बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 70% है। तो इससे आप खासकर बायोडाइवर्सिटी के मामले में इन 17 देशों का कितना वजन है, इनकी कितनी बड़ी भूमिका है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो डेटा मैंने आपको बताए हैं ये डेटा आंसर राइटिंग के लिए बहुत वजनी डेटा है और इनका उपयोग बहुत जगह पर किया जा सकता है। अगर आप कोई निबंध लिख रहे हो जैव विविधता पर या पर्यावरण पर, तब भी आप इन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। खैर मित्रों, तो इस एपिसोड में, अपने इस लेक्चर में मैं आपसे जो भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण है, आप कह लीजिए बायो ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आप पाएंगे कि पर्यावरण पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी का लगे, तो उसमें जो बायोडाइवर्सिटी पर क्वेश्चन होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया से जुड़े हुए होते हैं। पहली बात, वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरी बात जो वो जानना चाहते हैं वो स्ट्रेट नहीं होता, यानी कि यदि आप सीधे सीधे कोई भी टॉपिक पढ़ लें, इससे रिलेटेड चीजों को रट लें, तो थोड़ी सी देखिए मदद तो मिलेगी। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वो आपका बिल्कुल वेस्ट चला गया है, उसका कोई अर्थ नहीं, आपको मदद मिल सकती है, लेकिन अगर आप उसे समझ लेते हैं तो उससे आप बहुत ही उस मामले में परफेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं, ये टॉपिक आप सीधे इसे कह सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके पैरेलल चलता है, लगभग। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब हम भारत का भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं, भौगोलिक, यहां हम बायो शब्द को हटा रहे हैं, जैव विविधता को हटा रहे हैं, भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं, तो भौगोलिक वर्गीकरण का आधार क्या होगा, यही होगा कि वहाँ वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ जंगल कैसे हैं, यही सब आधार होंगे ना। वहाँ की मिट्टी कैसी है, पहाड़ है, चट्टान है, रेगिस्तान है, यही सब तो आधार होंगे ना। उसी के आधार पर तो हम कहते हैं कि अच्छा ये हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये गंगा यमुना का ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, और फिर पता लगा कि ये दक्षिण का पठार हो गया, ये पता लगा कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट हो गया, ये हमारे द्वीप हो गए। इसी तरह से तो हम वर्गीकरण करते हैं ना। याद करने की कोशिश कीजिए जो भूगोल में आपने वर्गीकरण पढ़ा होगा। तो देखिए जो वर्गीकरण किया गया है वो विविधता ही तो है, और क्या है? तो सीधी सी बात है कि यहां हम उसको जैव विविधता पर अप्लाई कर रहे हैं। बात वही है, बात बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़े से अलग भाषा में। कहीं कहीं तो आपको बिल्कुल पैरेलल ही लगेगा। इसलिए हालांकि जब मैं बात करूंगा हो सकता है कि तब आपको कुछ जटिलताएं जैसी बात लगें, कुछ उलझन सी महसूस हो, लेकिन आप अपने को इस उलझन से बचाइए। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको बताया है कि सीरीज के, कि अगर आपके पास भूगोल की जानकारी है तो आपके लिए इसे समझना बहुत मजेदार होगा। सरल को मैं नहीं कह रहा हूं, मजेदार होगा। कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो अभी आप सुन लीजिए, इसके बाद इन्हें सुरक्षित रख लीजिए, फिर जब आप भूगोल पढ़ लेंगे तब आप इन्हें फिर से सुन लीजिएगा। इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण क्या है। जैव भौगोलिक दृष्टि से भारत को सामान्यतया 10 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके 10 भाग बनाए गए हैं, और ये जो 10 भाग हैं ये बताते हैं कि यहां यहां इस तरह की जैव विविधता है। देखिए वहां जो भौगोलिक वर्गीकरण है वहां थोड़ा सा फर्क होता है, यहां जो भौगोलिक वर्गीकरण है, या चूंकि ये जैव से संबंधित है तो थोड़ा सा फर्क मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि काफी कुछ पैरेलल भी है। तो जो हमने पहला जो वर्गीकरण बनाया है वह द ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। जब हम ट्रांस हिमालय कहते हैं इसका मतलब है कि हिमालय का क्षेत्र बहुत बड़ा, वो क्षेत्र जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ, हिमालय का बिल्कुल ऊपरी भाग आप कह लीजिए, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो अगर भारत के बर्फ से ढके हुए क्षेत्र की हमें कल्पना करनी है, और ये कैपेसिटी आप में आ जानी चाहिए, तो वह क्षेत्र कौन सा होगा? याद रखिए हम भारत के भौगोलिक की बात कर रहे हैं, विश्व के भौगोलिक की बात नहीं करें, क्योंकि जब आप विश्व के भौगोलिक की बात करेंगे तो आप बिल्कुल चाइना वगैरह वाला एरिया भी शामिल कर सकते हैं, और आपको मालूम है कि चाइना भी महाविविधता राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन हम तो भारत की बात कर रहे हैं ना, ये भारत का भौगोलिक वर्गीकरण है, जैव भौगोलिक वर्गीकरण। तो भारत के अंतर्गत ट्रांस हिमालयन की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता यह है कि यह बर्फ से ढका हुआ हिमालय का ठंडा भाग है, सिंपल तरीके से, तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? वो होगा हमारा यूटी लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख का जो हिमालयी क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। अब आपको थोड़ा सा सोचना यह होगा कि जो स्थान हमेशा बर्फ से ढका हो, और हिमालय है इसका मतलब है कि ऊंचाई पर है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां किस तरह की वनस्पतियां होंगी और किस तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, इसके बारे में अब आप थोड़ा अपने ढंग से सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा दबाव डालिए, डेफिनेटली आपको उत्तर मिलेंगे कि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां किस तरह की वनस्पतियां होती हैं और किस तरह के वहां जीव जंतु पाए जाते हैं, राइट। तो यह है हमारा पहला वर्गीकरण। जो दूसरा है, जो दूसरा भाग है, वह रेंजेस ऑफ हिमालय, रेंजेस ऑफ हिमालय, जिसको आप कहते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं या हिमालय की पर्वत मालाएं, रेंजेस ऑफ हिमालय। क्योंकि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय तो ठीक है, पर्वत एक ही है, लेकिन उसकी श्रृंखलाएं बहुत हैं। आप देखिए कि भारत के नक्शे को आप देखिए तो जो हिमालय के क्षेत्र को हम आइडेंटिफाई करते हैं भौगोलिक दृष्टि से भी, तो आप पश्चिम के हिमालय को देखिए, हिमालय का जो पश्चिम भाग है, और आप हिमालय के पूर्वी भाग को देखिए, पूर्वी भाग को जब आप देखते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक पहुंच जाते हैं, है ना, वो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है हम वहां तक पहुंच जाते हैं, और जब पश्चिमी वाला जो हिमालय है उसमें फिर आपका ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का ये पूरा का पूरा भाग है, ये उत्तराखंड वगैरह। तो हम हिमालय को भी बकायदे दो भागों में बांट करके देखते हैं। सामान्य तौर पर वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। हालांकि हैं ये दोनों हिमालय के हिस्से, लेकिन दोनों बिल्कुल एक नहीं है, उनमें फर्क है। फर्क इस बात को लेकर के है कि जैसे सामान्य तौर पर, और ज्योग्राफी में आप पढ़ भी चुके होंगे, और मित्रों ज्योग्राफी में ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी है उसमें मैंने बहुत विस्तार से और बड़े खूबसूरत तरीके से इन सबको समझाया है, और बाकायदे एनिमेशन के जरिए समझाया गया है। वहाँ हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं आप जानते हैं कि इस मामले में तो अद्भुत हैं, कि जो भी बातें कही गई हैं एनिमेशन बता बता करके किया गया, सबके एनिमेशन, बहुत मेहनत होती है एनिमेट करने में। तो देखिए, पूर्वी हिमालय में क्या है, वर्षा ज्यादा होती है पश्चिमी हिमालय की तुलना में, ठीक है। अब मैंने एक फैक्ट बताया आपको कि पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में वर्षा ज्यादा होती है। चलिए अब फिर इस पर एक प्रश्न मैं पूछता हूं, तो आप बताइए कि जो वनस्पति की सघनता है, वेजिटेशन जो है, कहां डेंस वेजिटेशन होगा, यानी कि कहां बहुत घने जंगल होंगे, घने पेड़ होंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में या कम वर्षा वाले क्षेत्र में। देखिए ये तुलनात्मक हम बात कर रहे हैं ना, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिमालय में अगर आप कहते हैं कि कम डेंस होगा तो वो पूर्वी हिमालय की तुलना में है वो, अदरवाइज वो भी अपने आप में डेंस ही मिलेंगे। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि नहीं, जो पूर्वी हिमालय है उसमें वनस्पति की जो सघनता है वो अधिक होगी, क्योंकि वहां वर्षा अधिक होती है। अब आप देखिए कि पूछे कि वर्षा अधिक क्यों होती है, अब मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो ज्योग्राफी का हिस्सा है, फिर तो थोड़ा सा भटकना हो जाएगा। अब आप देखिए कि जब हम पूरे हिमालय क्षेत्र को लेते हैं, क्योंकि अब हिमालय की पर्वतमालाओं पर हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के बारे में यहां आपको बताया है, हम तो पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं हिमालय पर्वत पर, नीचे से, और हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं, ऊपर चलते चले जा रहे हैं, तो नीचे तो टेम्परेचर अधिक है, और जैसे जैसे हम पर्वत के ऊपर चलते चले जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, इसके बारे में शुरू में आप जान चुके हैं। तो यहां आप सीधे सीधे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिमालय पर बकायदे उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के और टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। अब जो बिल्कुल नीचे का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो पद क्षेत्र है, आप कह लीजिए जो तराई का क्षेत्र है, वहां आपको उष्णकटिबंधीय वन मिल जाएंगे, यानी कि सघन वन, बड़े बड़े वृक्ष, लंबे लंबे और खूब सघन, खूब छायादार वृक्ष, ये मिल जाएंगे। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो जैसे टुंड्रा सदृश जलवायु होती है, टैगा सदृश जलवायु होती है, है ना, तो उस तरह की छोटी छोटी वनस्पतियां मिलने लगेंगी। जब हम बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र में चले जाएंगे तो ये एक बात हो गई कि हिमालय में देखिए कितनी वैरायटी हो गई। अब आप उष्ण कटिबंध से लेकर के बकायदे टुंड्रा सदृश वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों अब ये है हिमालय की पर्वतमालाओं में पाए जाने वाली जैव विविधता। मुझे आज अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, कल इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।